प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
पल पल मसीह के प्यार में बीतेंगे उम्र भर, जब तक है सांस गाऊंगा गूंजेगी हर डगर। पल पल मसीह के प्यार में बीतेंगे उम्र भर, जब तक सांस गाऊंगा गूंजेगी हर डगर। अब जिंदगी बसे पल पल मसीह के प्यार में बीतेंगे उम्र भर, जब तक है सांस गाऊंगा गूंजेगी हर डगर। चले दूं कहे जिधर पल पल मसीह के प्यार में बीतेंगे उम्र भर, जब तक है सांस गाऊंगा गूंजेगी हर डगर। हमराह न हो, रिश्ते हो दोस्त हो कोई गमख्वार हो न हो, होगा मसीह के साथ ही, होगा मसीह के साथ ही जीवन मेरा अमर, पल पल मसीह के प्यार में बीतेंगे उम्र भर, जब तक है सांस गाऊंगा गूंजेगी हर डगर।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम आपको नमस्कार कहते हैं और आशा करते हैं कि आप प्रभु के अनुग्रह से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम नए नियम से मरकुस रचित सुसमाचार का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके पांचवें अध्याय को आरंभ करेंगे। मरकुस के पांचवें अध्याय के मुख्य विषय इस प्रकार से हैं, गरासेनियों के देश के दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति की चंगाई। दूसरा विषय है याइर नामक व्यक्ति की बेटी को जीवनदान। और तीसरा विषय है एक स्त्री को लहू बहने वाले रोग से चंगाई। तो इस प्रकार से इस पांचवें अध्याय में हम तीन प्रमुख विषयों का अध्ययन करेंगे। अब हम मरकुस के सुसमाचार के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन पर आ रहे हैं, क्योंकि यहां तीन ऐसे महान आश्चर्य कर्मों की चर्चा है जिन्हें केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ ही कर सकते हैं। सो आइए हमारे साथ अपनी पवित्र बाइबल से देखिए और इस बात पर ध्यान रखिएगा कि जिन आश्चर्य कर्मों की यहां चर्चा की गई है वो निसंदेह केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ ही से संभव हो सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय 1-17 पद इन पदों में इस प्रकार से वर्णन है, वे झील के दूसरी ओर ग्रासेनियों के देश में पहुंचे और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों के बीच रहता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी बांधकर नहीं रख सकता था, क्योंकि बेड़ियों और जंजीरों से तो वह प्रायः बांधा गया था, परंतु वह जंजीरों को तोड़ दिया करता और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था और कोई इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे वश में कर सके। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और पत्थरों से स्वयं को घायल किया करता था। वह दूर से यीशु को देखकर दौड़ा और झुककर उसे प्रणाम करने लगा और जोर से चिल्लाकर उसने कहा, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे यातना ना दे। क्योंकि वह उससे कह रहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे गिड़गिड़ाकर विनती की कि हमें इस प्रदेश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था और उन्होंने उससे विनती करते हुए कहा, हमें उन सुअरों में भेज कि हम उनमें समा जाएं। उसने उन्हें अनुमति दे दी। अशुद्ध आत्माएं उसमें से निकलकर सुअरों में समा गईं और सुअरों का झुंड जो लगभग 2000 का था ढलान पर से झपटा और झील में गिरकर डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर तथा गांव में ये समाचार सुनाया और लोग जो कुछ हुआ था उसे देखने को आए। फिर वे यीशु के पास आए और उस मनुष्य को जिसमें दुष्ट आत्मा थी, अर्थात उसी को जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने तथा सचेत बैठे देखा और डर गए। जिन्होंने ये देखा था उन्होंने दुष्ट आत्माग्रस्त मनुष्य तथा स्वरों के विषय में सब कुछ जो हुआ था उन्हें बताया। वे उससे अपने क्षेत्र से चले जाने के लिए विनती करने लगे। वे उससे अपने क्षेत्र से चले जाने के लिए विनती करने लगे। यहां प्रभु का वचन पूर्ण हुआ। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए मित्र, इस वचन को समझने के लिए प्रभु से सामर्थ और बुद्धि मांगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, बड़ी दीनता के साथ हम अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इन सुंदर क्षणों के लिए जो आपने हमको दिए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमारी सहायता करने की कृपा करें, ताकि हम आपके पवित्र वचन को समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार आचरण भी कर सकें। हमारी प्रार्थना है, यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है या किसी समस्या में उलझा हुआ है या दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, प्रभु आप उसे पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करने की कृपा करें, जिससे कि वह जान ले कि आप ही जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मित्रवर, हमने आपके समक्ष मरकुस के 5:1-17 पदों को पढ़ा और यहां पर एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति के विषय में बताया गया। इस व्यक्ति में अनेक दुष्ट आत्माएं थीं और ये गरासेनियों के देश में रहता था। मित्रवर, याकूब के 12 पुत्रों में से एक का नाम गाद था। इस नगर का नाम गदारेनियो भी है। इसे गदारेनियो और गरासेनियों के नाम से जानते हैं। और ये गरासेनियों का या गदारेनियों का जो देश था, ये गाद के घराने को दे दिया गया, जो यर्दन के पूर्व में स्थित है। गाद ने अपनी इच्छा से यर्दन नदी के गलत स्थान को चुना। परमेश्वर ने उसे यर्दन के पश्चिमी तट पर बसने को कहा था। परमेश्वर की इच्छा थी कि वह अपने लोगों को यर्दन के पश्चिमी तट पर बसाए, किंतु गाद ने अपनी इच्छा से यर्दन नदी के पूर्वी तट को चुना। गाद का घराना वह था जिसने यर्दन का पूर्वी तट चुना और परिणाम यह हुआ कि वे आपत्तिजनक पशुओं का व्यवसाय करने लगे, जो एक इसराइली के लिए लज्जाजनक कार्य था। स्मरण रहे, जब मैं और आप परमेश्वर से दूर होना आरंभ करते हैं, परमेश्वर की इच्छा का बहिष्कार कर अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, तो हम निरंतर परमेश्वर से दूर ही होते जाते हैं। और जब हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, तो हमारा जीवन दुष्ट आत्माओं का गढ़ बन जाता है और हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं अपना निवास करना आरंभ कर देती हैं और हमारी ऐसी दशा बना देती हैं जैसा कि हमने अभी प्रभु के वचन में पढ़ा। मेरे मित्र, परमेश्वर से दूरी हमारे लिए हानिकारक है, हमारे पतन का कारण है। इसलिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, उसकी समीपता में बने रहें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वरीय जीवन बना रहे और हमारा जीवन आशीषमय जीवन हो। 17वें पद में हमने पढ़ा, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगाई दी और उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल गईं और ये बात वहां के गांव के लोगों को पता चली, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या व्यवहार किया। 17वें पद में हमने पढ़ा कि वे अर्थात उस गांव के लोग उससे अर्थात प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे कि तू हमारे क्षेत्र से चला जा। वो उससे विनती करने लगे कि तू हमारा क्षेत्र छोड़कर कहीं और चला जा। मेरे मित्र, आज भी मनुष्य का पशुओं की तुलना में मनुष्य के साथ ऐसा ही व्यवहार है। मनुष्यों की दृष्टि में मनुष्य की अपेक्षा पशु अधिक महत्वपूर्ण है, किंतु स्मरण रहे, परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य सबसे मूल्यवान प्राणी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप तथा अपनी समानता में रचा है। वह व्यक्ति दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, किंतु मनुष्य था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया और दुष्ट आत्मा जगत पर अपने अधिकार व सामर्थ्य को प्रकट किया। हमें परमेश्वर के परिदृश्य को समझने की आवश्यकता है। अब आइए आगे देखते हैं 18वें पद से। और जब वह नाव में चढ़ने लगा तो वह मनुष्य जो पहले दुष्ट आत्मा ग्रस्त था विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आने ना दिया और उससे कहा, अपने लोगों के पास घर जा और उन्हें बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे महान कार्य किए हैं और उसने तुझ पर कैसी दया की है। वह चला गया और दिकापुलिस में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे महान कार्य किए, और सब लोग आश्चर्यचकित हुए। इन पदों में हमने देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां से जाने लगे तो ये व्यक्ति भी जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी थी वो भी उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त करता है, किंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसको मना किया। लेकिन उससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने घर वापस जा। और जैसा कि हम यहां पर पढ़ते हैं कि उसके नगर का नाम था दिकापुलिस, जिसका अर्थ है 10 शहर, 10 नगर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू दिकापुलिस में जा, अपने नगर जा, वहां जाकर लोगों को बता कि प्रभु ने मेरे लिए कैसे कैसे महान कार्य किए हैं और मुझ पर कैसी दया हुई है। और उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया तो लोग इन सारी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हुए। मेरे मित्र, आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। हमारा कार्य यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के इन कार्यों की चर्चा करें, इस बात की साक्षी दें कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए महान कार्य किया है, उन्होंने मेरा उद्धार किया है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझको चंगाई दी है। और इस प्रकार से हम बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह के समीप ला सकते हैं, हम सत्य का प्रचार कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व मैं कुछ क्षण ठहरना चाहता हूं और एक विशेष विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। मैं दुष्ट आत्माओं की वास्तविकता पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि न केवल मरकुस वरन चारों सुसमाचार दुष्ट आत्माओं के होने की साक्षी देते हैं। जो लोग पवित्र शास्त्र के ज्ञाता होने का दावा करते हैं उन्हें दुष्ट आत्माओं के अस्तित्व को भी स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात है कि जिस प्रकार वे प्रभु यीशु के समय क्रियाशील थीं, अर्थात वे दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के समय में क्रियाशील थीं, उसी प्रकार वह वर्तमान समय में भी क्रियाशील हैं। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। तीसरी बात, एक कारण विशेष यह है कि मानव देह को दुष्ट आत्माएं अपने लिए प्रयोग करना चाहती हैं, और वे सर्वदा इस प्रयास में रहती हैं कि मानव देह को अपनी दुष्टता के लिए प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल करें। ये चरम सीमा पर अशांत और व्याकुल हैं। दुष्ट आत्माओं के पास शांति नहीं है, और वो शांति के लिए कोई स्थान खोजती हैं, और सबसे सुंदर स्थान उनको मनुष्य का शरीर ही दिखाई देता है। तब चौथी बात है, उन्होंने नरक में जाने की अपेक्षा स्वरों में जाना अधिक अच्छा समझा। हमने यहां पर देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को निकालने की बात की तो दुष्ट आत्माओं ने, जो एक बड़ी सेना के रूप में उस व्यक्ति के भीतर थीं, गिड़गिड़ाकर प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि हमें इस प्रदेश से बाहर ना भेज, और उन्होंने विनती की कि हमें इन स्वरों में भेज दे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो नरक में जाना पसंद नहीं करती, उन्होंने नरक में जाने की अपेक्षा स्वरों में जाना अधिक अच्छा समझा। पांचवी बात हम देखते हैं कि इन्हें दुष्ट आत्मा कहना उचित है, शैतान नहीं। हमको इन्हें शैतान नहीं कहना चाहिए, वरन दुष्ट आत्मा ही कहना उचित शब्द है, क्योंकि शैतान तो एक ही है और दुष्ट आत्माएं अनेक हैं। छठी बात हम यहां पर ये पाते हैं कि पवित्र बाइबल इनकी उत्पत्ति के विषय में हमें कुछ नहीं बताती। सातवीं बात हम ये देखते हैं कि ये अनेक हैं, सेना के रूप में हैं। दुष्ट आत्माएं अनेक हैं, शैतान एक है। इसलिए युद्ध स्तर पर मानव के विनाश पर जुटी हुई हैं। आठवीं बात हम देखते हैं इनके विषय में कि ये शैतान के अधिकार में हैं, दुष्ट आत्माएं शैतान के अधिकार में हैं। और मेरे विचार से जब शैतान को स्वर्ग से नीचे फेंका गया उस समय उसके साथ अनेक स्वर्गदूत भी थे जो उसके अनुयायी थे, और यही स्वर्गदूत इन दुष्ट आत्माओं के रूप में आज इस पृथ्वी पर क्रियाशील हैं। तब नवीं बात है, ये शैतान के कार्यक्रम के अनुसार कार्य करती हैं। शैतान इनको अपनी योजना देता है। उनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य का नाश करना है, मनुष्य का पतन करना है। तब दसवीं बात, आज वर्तमान में हमारे सामने इसके उदाहरण हैं। अनेक स्थल हैं जहां शैतान की उपासना होती है। फिर ग्यारहवीं बात है कि प्रभु यीशु मसीह को दुष्ट आत्माओं पर सामर्थ्य और अधिकार प्राप्त है। यह हमारे लिए एक महान पाठ है जिसे हमें सीख लेना चाहिए। यह सत्य है कि शैतान और दुष्ट आत्माएं हैं, उनका अस्तित्व है, इनमें सामर्थ्य है। किंतु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को दुष्ट आत्माओं और शैतान की शक्तियों पर अधिकार प्राप्त है, और ये वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण और सुंदर बात है। हम देखते हैं कि ग्रासेनियों के लोगों ने कहा कि तू हमारे क्षेत्र से चला जा, और आज भी अनेक लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षा स्वरों से भी बुरी वस्तुओं को अपने साथ रखना अधिक उत्तम समझते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह और उनके जीवन की बुरी वस्तुओं और बुरी आदतों की तुलना होती है, किसको छोड़ा जाए किसको रखा जाए, तो मेरे मित्र, वो यीशु मसीह को त्यागने को तैयार हैं। वो अपनी बुरी आदतों को, बुरी वस्तुओं को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते, और ऐसे लोग कभी भी प्रभु से आशीष नहीं प्राप्त करते। वो प्रभु यीशु मसीह के महान वरदान, उनके अनुग्रह से वंचित ही रहते हैं। तब हमारा अगला विषय है लहू बहने वाली स्त्री की चंगाई। यह आश्चर्य कर्म याइर की बेटी को जीवित किए जाने वाले आश्चर्य कर्म से बड़ी निकटता से जुड़ा हुआ है। सो आइए इसको देखते हैं। जब यीशु नाव से फिर ऊपर गया तो एक विशाल जनसमूह उसके चारों ओर एकत्रित हो गया, और वह झील के किनारे ठहर गया। फिर आराधनालय के अधिकारियों में याइर नामक एक व्यक्ति था, और उसे देखकर उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर उससे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से, विनती करके कहने लगा, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, कृपया चलकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए और जीवित रहे। वह उसके साथ चला और एक विशाल जन समूह भी उसके पीछे चल पड़ा, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत से वैद्यों के हाथ से दुख उठाया था, और अपना सब कुछ व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और अधिक बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चोगे को स्पर्श किया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोग से चंगी हो गई हूं। उसी क्षण यीशु ने ये अनुभव किया कि मुझमें से सामर्थ्य निकली है, और उसने भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्रों को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू तो देख ही रहा है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, और तू कहता है किसने मुझे छुआ? तब उसने उस स्त्री को जिसने ये किया था देखने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली, परंतु वह स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे जानकर डरती और कांपती हुई आई और उसके सामने गिर पड़ी और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो जा। मित्रवर, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुनः अपने स्थान पर वापस लौटते हैं। लूका इस स्त्री के विषय में बताता है कि वह कभी चंगी नहीं हो सकती थी। लूका कहता है कि उसका रोग ऐसा था कि ये स्त्री कभी भी चंगी नहीं हो सकती थी, किंतु हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने उस स्त्री को चंगा किया और एक अद्भुत रीति से वो स्त्री चंगी हुई। उसने प्रभु के वस्त्र को छू लिया और उस वस्त्र के छूने के द्वारा ही उसको चंगाई प्राप्त हो गई। मित्रवर, अग्रिम पदों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी चंगाई का श्रेय उसके विश्वास को दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया है। श्रोता, इस स्त्री की दशा 12 वर्ष से थी और याइर की पुत्री की आयु भी 12 वर्ष है। एक ओर 12 वर्ष का दुख समाप्त हुआ, दूसरी ओर 12 वर्ष का दीपक बुझने पर है, ज्योति अंधकार में परिवर्तित होने पर है। प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर विलंब कर रहे थे और उसी समय याइर के सेवक ने आकर उसे कुछ संदेश दिया जो यहां पर लिखा हुआ है। वो ये कह ही रहा था तभी आराधनालय के अधिकारी के घर से लोगों ने आकर कहा, अब गुरु को और कष्ट क्यों देता है? तेरी बेटी तो मर गई है। परंतु यीशु ने इस बात को सुन लिया और आराधनालय के अधिकारी से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे मित्र, हमारे जीवन में विश्वास एक महत्वपूर्ण वस्तु है। आज भी प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक व्यक्ति से यही कहते हैं, मत डरो, विश्वास रखो और परमेश्वर की सामर्थ को देखो। आज हम यहीं पर ठहर जाते हैं। अगले कार्यक्रम में हम पुनः आपसे भेंट करेंगे और हम देखेंगे कि प्रभु किस प्रकार से इस बच्ची को चंगाई देते हैं। अब प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।